ओम शांति। बाबा आकर के संगम युग में बच्चों को आप समान विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। इस जन्म में न केवल हम स्वयं के कल्याणकारी होते हैं, लेकिन परिवार के कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी है, है ना? क्योंकि पहले बाबा के पास आने से पहले हम केवल स्वयं के कल्याणकारी थे, केवल स्वयं के बारे में सोचते थे, स्वयं के खुशी के बारे में सोचते थे, सुख के बारे में सोचते थे, शांति के बारे में सोचते थे। लेकिन अभी बाबा कहते हैं बेहद में जाने की जरूरत है, हद से बेहद के ओर जाना है। क्यों बेहद में जाना है, विश्व कल्याणकारी क्यों बनना है? बाबा तो है ही है, लेकिन बाप समान हम मास्टर विश्व कल्याणकारी क्यों बने? क्योंकि बाबा जो भी बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है ना। क्योंकि जब तक हम अनेकों का कल्याण नहीं करते, हम राजा नहीं बन सकते। राजा बनना है तो कल्याण करना होगा, है ना? प्रजा बनानी होगी, फॉलोअर्स तो नहीं कहेंगे यहां, तो प्रजा तो भविष्य में होगा, लेकिन अनेकों को प्रेरणा देने की जरूरत है, अनेकों का कल्याण करने की जरूरत है। तो अनेकों का कल्याण अगर करना है तो अंदर वो शक्ति होना चाहिए ना, ताकत होनी चाहिए। ताकत के बिना, शक्ति के बिना हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे एक्सरसाइज ज्यादा हम लोग नहीं करते, हम मेरे जैसे वेट वाले कोई बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति और एक्सरसाइज बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन वेट एक जैसा है, और कहे कि बेंजी वो भाई है ना 20 किलो 50 किलो भी उठा देता है, तो आप भी उठा सकते हो ना, क्योंकि एक ही वेट के हैं। कहेंगे नहीं, मैं नहीं उठा सकती 50-80 किलो का, मैं नहीं उठा सकती। वो भाई उठा सकता है, क्यों उठा सकता है? क्यों उठा सकते और मैं क्यों नहीं उठा सकती? उसने वो उसके ऊपर मेहनत की है, अभ्यास किया है हर रोज, वो उसके मसल्स डेवलप हुए हैं, ताकत उसके शरीर में है, मसल्स में है ताकत, क्योंकि लगातार हर रोज उसने अभ्यास किया हुआ है, है ना? मैंने नहीं किया है तो इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर, शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है। ऐसे ही आत्मा के अंदर भी ताकत होनी चाहिए ना, तभी जाकर के हम महान कार्य कर सकते हैं। और वो ताकत कब आएगा? कब आएगा? अभ्यास, है ना? लगातार जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना ताकत बढ़ेगी अंदर, अंदर जो मॉरल मसल या आत्मा की शक्ति जो है वो बढ़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस, और किस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, किन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी? बाबा ने तो इतना अच्छा बड़ा ज्ञान दिया है, वो सागर है, है ना? और खास बाबा ये कहते हैं गुण और शक्तियों को धारण करना है। गुणों के बारे में तो पता है, आत्मा की सात गुण है ना, लेकिन शक्तियों के बारे में कहते हैं अष्ट शक्तियां हैं, है ना? तो इन अष्ट शक्तियों के बारे में हमने कब सुना था, कोर्स किया था जब किया तब सुना था, उसके बाद में अभ्यास किया। एक एक शक्ति का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अष्ट शक्तियां तो मेन शक्तियां हैं, लेकिन उसके अलावा तो बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन मुख्यतः ये अष्ट शक्तियां हैं, और इन अष्ट शक्तियों को जब हम अभ्यास में लाते हैं, कर्म में लाते हैं, इसको कर्म योग कहेंगे। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं केवल कनरस के लिए नहीं ना, बहुत अच्छा कह करके चले जाएं, और सत्संगों में और हमारे इस संगठन में अंतर क्या रहा, है ना। यहां हमें धारण करने की जरूरत है, वहां केवल कनरस था, यहां धारण करना है। और हर एक बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को हमें कर्म में लाने की जरूरत है। एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हर पॉइंट बाबा का जो भी बोला है प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन उसको हमें हर रोज की जिंदगी में उसको अप्लाई करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। और ज्ञान चक्षु के द्वारा हमें उन सीन्स को देखने की, ड्रामा को देखने की जरूरत है। ज्ञान के चक्षु के बिना हम ऐसे ही देखेंगे, क्या नजर आता है? ज्ञान चक्षु के बिना हम ऐसे देखेंगे तो क्या नजर आएगा? ड्रामा के सीन्स को क्या नजर आएगा? केवल स्थूल चीजें नजर आएगी, इसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब ज्ञान के चक्षु के द्वारा हम देखना शुरू करते हैं तो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है, हर सीन के पीछे का कारण हमें पता है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया हुआ है, है ना। तो कारण हमें पता है क्योंकि ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है। इसीलिए ज्ञान चक्षु को यूज करके उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो आज अगर हमें शिव शक्ति बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो हम केवल आज मुख्यतः अष्ट शक्तियों को पुनः दोहराएंगे। पहले हमने सुना था एक नए आत्मा के रूप में, या नए जब स्टूडेंट्स बनते हैं उसके रूप में हमने सुना था इन अष्ट शक्तियों को। आज हम उन सभी अष्ट शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे बाबा के बच्चों के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहली शक्ति सहन शक्ति, विस्तार को संकीर्ण, वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अंतर्मुखता की शक्ति। हमारे योगी जीवन शुरू होता है अंतर्मुखता से। अगर हम अंतर्मुखी नहीं हैं तो योगी भी नहीं हो सकते, है ना। जब हमें ये ज्ञान मिला मैं आत्मा हूं, तो बाबा ने ये भी कहा स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो। तो स्वदर्शन और स्वचिंतन करने की जरूरत है, बार बार खुद को देखने की जरूरत है। क्यों खुद को देखने की जरूरत है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ला रहे हैं, तो स्व को परिवर्तन हमें पहले करना है, है ना। स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता। तो यहां मुझे आत्मा को परिवर्तन करने की जरूरत है। तो आत्मा को परिवर्तन करना है तो आत्मा के अंदर जो भी दुनिया है उसको मुझे परिवर्तन करना होगा। तो वो उस दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं आत्मा में जिनको मुझे परिवर्तन करना है और मैं ही कर सकती हूं, कोई और नहीं कर सकता उस चीज को, है ना? मन बुद्धि संस्कार है, यहां वृत्ति है, इन सभी बातों को परिवर्तन मैं खुद कर सकती हूं और मैं खुद देख सकती हूं, कोई और वहां नहीं देख सकता। तो इसीलिए बार बार मुझे अपने आप को देखने की जरूरत है। और ये जड़ है सभी समस्याओं के समाधान का। अगर आत्मिक स्थिति मेरा पावरफुल नहीं है, समस्याएं मेरे जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं। हर समस्या का समाधान है आत्मिक स्थिति, है ना? आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को, है ना? कहीं ना कहीं आत्मिक स्थिति या आत्मिक दृष्टि में कमी है कि खुद को आत्मा समझना या दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखना। मैं अभ्यास वो नहीं कर रही हूं तो इसीलिए समस्याएं बढ़ेगी, है ना? क्योंकि सभी समस्याओं का जड़ है देह भान। आत्मिक भान सभी समस्याओं से परे ले जाने वाली स्थिति है। तो अपने आप को देखें, दिन भर में मैं कितना आत्मिक स्थिति या आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करती हूं। क्या मैं परिवार वालों को भी ये समझ करके देखती हूं कि वो आत्मा है, वो भी आत्मा है, एक भी आत्मा है? और ज्यादातर करके जो बहुत ही निकट होते हैं ना लोग, जो संबंधी बहुत ही परिवार वाले बहुत निकट होते हैं, उनके प्रति आत्मिक दृष्टि रखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो संबंध में इतना ज्यादा अटैच्ड हो चुके हैं, उसके भान से निकलना और आत्मा समझ करके देखना मुश्किल लगता है, है ना? बहुत सालों से भले बाबा के बच्चे बने हुए हैं, लेकिन परिवर्तन अगर नहीं दिखाई दे रहा है जीवन में, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभ्यास में कमी है। ऐसा नहीं कि ज्ञान में ताकत नहीं है, ज्ञान में ताकत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान शिव बाबा की का ज्ञान है ये, तो ज्ञान में ताकत है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? हमारे अभ्यास में। इसीलिए फाउंडेशन है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, और इसमें बहुत ताकत है। बहुत साधारण रूप से नहीं देखिए इसको, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। कहीं भी आप समझते हैं कहीं प्रॉब्लम है, कहीं शायद चाहे आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है या परिवार में प्रॉब्लम है, आत्मिक स्थिति में बैठ करके हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, उसको वाइब्रेशन भेजना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी उस समस्या निकल जाएगी, टल जाएगी, या उसका समाधान आपको मिल जाएगा। क्योंकि एनर्जी फ्लो होता है आत्मा के थ्रू ना, वहां प्रकाश ही नहीं है तो फिर एनर्जी भी फ्लो नहीं होगा। आत्मा माना प्रकाश है, और वो प्रकाश इतना प्रज्वलित हो, इतना शक्तिशाली हो, ना केवल शक्ति मिले दूसरों को, लेकिन प्रकाश भी, लाइट और माइट दोनों का संचार होता है आत्मा के थ्रू। आत्मा इसलिए कहते हैं ना, आत्मा जब निकल जाती है तो ये तो डेड बॉडी है, है ना? आत्मा के अंदर वो प्रकाश, लाइट और माइट दोनों है, तो इसीलिए उसको प्रज्वलित करना है बार बार, सुबह से शाम तक बीच बीच में उसका अभ्यास करने की जरूरत है। तो अपने आप को देखते हुए अपने आप को मार्क्स देंगे, ठीक है, अपने नोटबुक में मार्क्स दे दीजिए अपने आप को कि आप आपके अंदर ये शक्ति कितने परसेंटेज में है, अंतर्मुखता की शक्ति 0 से 10 के बीच में। अगर बिल्कुल नहीं है तो 0 देंगे, बहुत ही ज्यादा है तो 10 देंगे। अपने आप को देखे और दे मार्क्स, तो पता चलेगा कि मैं कितना अभ्यास कर रही हूं और कितना करने की जरूरत है, है ना। तो यही है अंतर्मुखता, है ना। और दूसरी शक्ति समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति के चित्र में क्या देखते हैं, कछुआ नहीं, कछुआ तो पहले अंतर्मुखता की शक्ति में हो गया, आपका भी टेस्ट है अभी। बैग बैगेज है, आपका बैग बैगेज कितना है अभी, आप तो बाबा के बच्चे हैं, आपके बैग बैगेज तो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, कितना है अभी, यहां वो बैगेज नहीं, कमरे में जो बैगेज रखी है वो तो भले कितना भी हो, यहां आपका बैगेज कितना है, बोझ हटा दिया या अभी तक बोझ लेकर के घूम रहे हैं, हटा दिया है, अभी तक आता रहता है, आता रहता है या आप लाते रहते हो, हम लाते हैं। यहां दरवाजा, इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए परमिशन हम खुद देते हैं, हमारे परमिशन के बिना कोई अंदर जा नहीं सकता। अगर जा रहा है इसका मतलब है मैंने परमिशन दे दिया है। तो अगर बोझ है अंदर तो इसका मतलब है कि मैंने परमिशन दिया हुआ है उस बोझ को और मैंने निकाला नहीं है। घर में आपका कमरा है, पर्सनल कमरा होगा अगर बड़ा होगा तो, राइट, एक कोना तो होगा, एक कमरा तो होगा, बहनों का तो किचन तो है, उसके मालिक है, राइट। तो वो जो आपका स्पेस है आप कितना साफ रखते हैं, आपकी चीजें रखते हैं आप, और कोई भी आकर के थोड़ा भी छेड़खानी करे वहां, आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा कि मेरी चीजों को क्यों टच किया, मेरी चीजों को कहां वहां क्यों लेके गए। तो माना अपने स्पेस को, अपने कमरे को हम जैसा चाहे वैसा रखना चाहते हैं, कोई और आकर के उसको छेड़े वो पसंद नहीं आएगा हमें। और यहां कितने लोगों को मैंने अलाव किया है आकर के यहां छेड़खानी करे, किया है, है ना। तो हम स्वदर्शन आ जाओ, है ना, हम उसका राजा है ना, तो उसका पूरा कंट्रोल हमें लेने की जरूरत है। और जो भी एक्स्ट्रा लगेज है उसको साफ कर दीजिए आज, उसको साफ कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा लगेज कौन सा है जो लेकर के घूम रहे हैं अभी तक, बाबा के बनने के बाद भी, पर दर्शन, पर चिंतन, है ना, नेगेटिविटी तो मेजोरिटी चला गया होगा, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो मोटे रूप के जो विकार हैं वो तो मेजोरिटी चले गए होंगे अभी तक। लेकिन सूक्ष्म जो अभी तक रॉयल रूप से जो माया आती है वो अभी कहीं ना कहीं चिपकी हुई है ना, तो वेस्ट के रूप में, व्यर्थ के रूप में, अभी तक दूसरों को देखने की आदत तो अभी तक नहीं छूटा है। तो इसीलिए उसको परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम दूसरों को देखना बंद नहीं करेंगे तब तक स्व परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा ने क्या कहा है, किसको देखें, किसको देखे? फॉलो फादर, सी फादर, फॉलो फादर। केवल बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है। नो फॉलो सिस्टर्स, नो फॉलो ब्रदर्स। भाई बहनों को हमें फॉलो करना नहीं है। और नए नए जब आते हैं ना बाबा के पास, इतने उमंग उत्साह से आते हैं, बहुत नशे में रहे होते हैं कि भगवान मिल गया है, मुझे ये करना है, बहुत हाई लेवल नशा रहता है। लेकिन जैसे जैसे एक साल बीता, दो साल बीता, तो क्या होगा? वो नशा जो पहले था वो धीरे धीरे कम क्यों हो गया? कम क्यों हो गया? हाँ, कम क्यों हो गया? अटेंशन कम हुआ उसके कारण से नहीं हुआ, कोई और कारण हो गया। भाई बहनों को देखना शुरू किया वहां, ये इतने पुराने ऐसे करते, ऐसे बोलते, ऐसे व्यवहार करते, बाबा ने तो ऐसा कहा हुआ है। हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, बाबा ने तो ऐसा बोला है, ये तो ऐसा करते हैं, ये करते हैं। तो भाई बहनों को देखना जब शुरू करते हैं, क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, ये तो सीनियर है, ये तो टीचर बहन है, ये तो समर्पित है, ये तो मधुबन निवासी है, तो इनको देख करके हमारी जो अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज्यादा है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है? हर एक पुरुषार्थी है, हर एक अपने अपने यात्रा पर लगे हुए हैं, तो उनके अंदर क्या हो रहा है तो हमें क्या पता। तो इसीलिए ऊपर से जो भी दिखाई देता है उसको देख करके हम अपना मन बनाए कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसीलिए पर दर्शन हमें करना ही नहीं है। और देखना है तो क्या देखना है? क्या देखना है? आत्मा को देखना है और गुणों को देखना है। बाबा ने क्या कहा है कि कोयले को नहीं देखो, डायमंड को देखो। लेकिन डायमंड को छोड़ करके हम कोयले को देखना शुरू करते हैं, है ना? तो इसीलिए हर बात में पॉजिटिव देखे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं देखे, तो हम लाइट रह सकते हैं। नहीं तो हर बात में अगर हम ये सोचते ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं हुआ, भारीपन, और फिर आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप कितने चिंतित है, कितना भारीपन है आपके सिर पर। तो इसीलिए हर्षित मुख रहना है तो फिर हल्का रहना है, हल्का रहना है तो समेटने की शक्ति, हर चीज समेटना है, समेट करके ऊपर भी तो जाना है ना। सबसे ज्यादा बोझ किसको है अभी संसार में? सबसे ज्यादा बोझ पूरे संसार को अगर देखते हैं, पूरे संसार को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बोझ किसको, किसके ऊपर है? बाबा के ऊपर। बाबा को बोझ? बाबा को तो बोझ नहीं हो सकता, बाबा को जिम्मेदारी है, बस जवाबदारी है, बोझ नहीं कहेंगे। बोझ वाले क्या है? जिम्मेदारी अलग है, बोझ अलग है। जिम्मेदारी लेने की क्षमता अगर है तो बोझ महसूस नहीं होगा, तो निभाते चले जाएंगे। और बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनको तो बोझ ही नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा बोझ, भारीपन किसके ऊपर है? ब्राह्मणों के ऊपर है, ब्राह्मणों के ऊपर है। क्यों? ब्राह्मणों के ऊपर क्यों बोझ ज्यादा है? क्योंकि 63 जन्मों का बोझ है ना, है कि नहीं है? 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है उसका बोझ ब्राह्मणों के ऊपर है। जो आदि में आए हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा है, जिसने ज्यादा जन्म लिया हुआ है उनके ऊपर बोझ ज्यादा है ना। लेकिन हमारे अंदर ही ज्यादा ताकत है उसको उतारने की। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा मेरा साथी है ना। इसको हमें समझने की जरूरत है। कई बार ये भी हम कहते हैं ना कि ये ब्राह्मणों से बाहर वाले अच्छे हैं, ऐसा करते हैं, वो बाहर वाले इतने अच्छे व्यवहार, क्यों हम वो कंपेयर कर रहे हैं, क्यों बाहर वाले अच्छे लगते हैं, नॉन बीके अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो बोझ है ही नहीं ना। उन्होंने अभी जन्म लिया होगा, अभी अभी परमधाम से उतरे होंगे, तो वो पूरा शुद्ध पवित्र होंगे, तो इसीलिए उनके हर व्यवहार अच्छा लगने लगता है। लेकिन हमने कितना जन्म लिया है, आपने कितना जन्म लिया है, 84 जन्म लिया हुआ है, तो वो जो द्वापर युग से बोझ चढ़ना शुरू हुआ हिसाब किताब का, तो कितना ज्यादा बोझ सिर पर है ना। जैसे अगर मान लीजिए, अगर वर्ल्ड टूर के लिए निकलते हैं, एक मास का टूर है, तो स्टार्टिंग में जब निकलना शुरू करते हैं, ट्रैवल करना शुरू करते हैं, बहुत उमंग उत्साह होता है ना, ये देखना है, वो देखना है, चलो ये करना है, वो करते हैं, बहुत उमंग उत्साह से हम सब कुछ भाग भाग के देख रहे हैं, उमंग उत्साह है, बहुत एनर्जी है। लेकिन 25th डे, 26th डे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है वो एक मास का पैकेज, तो फिर आपके एनर्जी लेवल कैसा होगा। भले 5-स्टार होटल में रुक रहे हैं, अच्छा बहुत ही अच्छे भोजन खा रहे हैं, बहुत अच्छे जगह पर जा रहे हैं, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी क्या लगता है आपको, बस घर जाकर दाल चावल भी खा ले ना, अपना बिस्तर, अपना घर, वो अच्छा लगता है ना। घर वापस जाने की इच्छा जागृत होता है लास्ट में, चले घर। जब हमारी यात्रा पूरी हो रही है, तो दूसरा ग्रुप, नया ग्रुप जो शुरू कर रहे हैं, उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी में अंतर होगा। हम तो थके हुए हैं, उनकी यात्रा अभी शुरू हो रहा है ना? तो जो परमधाम से अभी उतरे हैं आत्माएं, तो उनकी एनर्जी तो ज्यादा होगा ना अभी, है ना। तो इसीलिए ये विश्वास रखे, बाबा जो कह रहे हैं कि बच्चे मुझे आपके सहयोग से ही सत्युग की स्थापना करनी है, आप ही बच्चे हैं, दूसरे कोई नहीं है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो एक दूसरे को उतने रेस्पेक्ट से देखना जब शुरू करेंगे ना, कुछ भी नहीं है तो बाबा को तो पहचाना है इसने, है ना, एक दूसरे के प्रति इतना रेस्पेक्ट, और एक दूसरे को एक फरिश्ते के रूप से जब देखना शुरू करेंगे, बाबा ने एक मुरली में बोला हुआ है, विनाश कब होगा, बहुत सुंदर बाबा ने कहा है कि विनाश तब होगा जब सभी ब्राह्मण आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे को उस नजर से देखेंगे, है ना। जब हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट से देखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे जो वेस्ट थॉट्स हैं, व्यर्थ सोच है, परदर्शन पर चिंतन, वो सब कुछ बंद हो जाएगा, और हर एक को बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। ये है समेटने की शक्ति, समेट करके अपना जो बोझ है वो हल्का रखे, अपने आप को देख करके अपने आप को मार्क्स दे दीजिए, 0 से 10 के बीच में अपनी शक्ति, आपके अंदर कितना है समेटने की शक्ति। और तीसरी शक्ति सहन करने की शक्ति, सहनशीलता। बाबा ने ये कहा हुआ है कि सहन वही आत्मा कर सकती है जो बहुत शक्तिशाली है, और सहन करने से हमारी शक्तियां बढ़ती भी हैं, है ना। सबसे मुश्किल भी लगता है सहन करना, लेकिन बहुत जल्दी अगर आत्मा की शक्तियों को बढ़ाना है तो सहन करना सीखना होगा। एक भाई है, बहुत ही मतलब पुराने हैं, कोई नाम है उनका, आतम भाई कहते हैं उनको, तो वो पाकिस्तान में सेवा कर रहे थे, और वो एक घटना हुई उनके साथ, गाड़ी में जा रहे थे, अचानक किसने अटैक किया उनके ऊपर, गोलियों से गोली चलाई, और 3 गोली लगी, 6 गोली लगाए उन्होंने शूट किया, 3 गोली लगी शरीर में, 3 गोली ऐसे एस्केप हो गया, बहुत मतलब खून बहा। और वो ड्राइव कर रहे थे, वो सीधा हॉस्पिटल गए और सारा ट्रीटमेंट कराया और घर में रहे और पुलिस के पास नहीं गए वो कंप्लेन करने के लिए। और पुलिस को पता चला और खुद उनके घर आए और पूछा कि ऐसा क्या हुआ। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं दर्ज कराना है, कंप्लेन नहीं दर्ज कराना है। पुलिस ने कहा कि नहीं, फिर भी हम कार्रवाई तो करेंगे, जांच पड़ताल तो करेंगे। तो उन्होंने फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कंप्लेन नहीं करना है। फिर भी वो लोग जांच पड़ताल किया, सब कुछ करने के बाद 3-4 लोगों के फोटोज, कुछ दिनों के बाद 3-4 लोगों के फोटोज लेके आए उनके पास और आकर के पूछा कि इनमें से कौन थे। तो फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं कुछ करना है उनके बारे में, मैं उनको माफ कर दिया है, मुझे कंप्लेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना। फिर भी पुलिस ने उन्होंने उनको फोर्स किया, तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, ये व्यक्ति थे। तो फिर ठीक है, हम जाते हैं उनके पास, उनके घर में जाते हैं। तो आतम भाई ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। पहले मुझे जानना है कि उन्होंने शूट क्यों किया मेरे ऊपर, मुझे मारना क्यों चाहते हैं, तो मैं अपने बेटे को लेकर के जाऊंगा। तो अपने बेटे को लेकर के वो गए, वहां घर गए और उनके पेरेंट्स थे, वो लड़के के पेरेंट्स थे। और वो भाई आ नहीं रहा था बाहर, फिर उनको कहा कि नहीं आया, मैंने कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बात करना है उससे। तो फिर जब बाहर आया वो भाई और बात करना शुरू किया, आप शूट क्यों के, मुझे मारना क्यों चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं बिजनेस कर रहा, मैं आपसे लोन लिया हूं, कर्ज लिया है और मेरा बिजनेस डूब गया है, और मैं आपके साथ 3-4 और लोगों के पास से मैंने कर्ज लिया है और मेरे पास पैसा नहीं है अभी कर्ज चुकाने के लिए, तो इसीलिए मैं बहुत परेशान था, क्या करूं कैसा करूं। तो इसीलिए आकर के मैंने, मेरी गलती थी, मैंने शूट कर लिया, सॉरी ये कर लिया। लेकिन फिर उन्होंने कहा, आतम भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, कितना कर्ज था आपका, कितना कर्ज लिया था मेरे से आपने, इतना जो भी रकम बताया। उसने बोला कि ठीक है, माफ कर दिया आपका कर्ज, तो मुझे नहीं देना वापस आप। और फिर पूछा कि कितने लोगों का और कर्ज था आपका, तो बोला 3 लोगों से और लिया था, इतना कर्ज था, कर्ज है। तो उन्होंने, आतम भाई ने कहा कि ठीक है, वो सभी कर्ज मैं चुकता कर दूंगा, तुम फ्री हो जाओ, कोई चिंता नहीं करो। तो वो उसका बेटा जो है, आतम भाई का जो बेटा है, वो परेशान हो रहा था कि क्या कह रहे पापा कि सभी का कर्ज माफ करेंगे, तो क्या क्यों कह रहे हैं ऐसे, थोड़ा परेशान हो रहा था। तो बाद में जब बाहर आए, घर से बाहर आए, तो बेटे ने पूछा पापा को कि पापा आपने ऐसे क्या कह दिया कि सभी पैसा उनको दे देना है क्या, क्यों ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए किया है, मेरा स्वार्थ था इसमें, क्योंकि अगर मैं कोर्ट का चक्कर लगाऊं तो कितना पैसा लॉयर के कारण, लॉयर को देना पड़ता था, कोर्ट में देना पड़ता था, उसके बजाय मैं इसको दे करके मैं फ्री कर दूं ना, तो अभी उसको जिंदगी भर ये संकल्प तो नहीं आएगा मुझे मारे, मैं मेरे को तो मारेगा नहीं ना वो जिंदगी भर। और दूसरी बात है कि वो फिर हिसाब किताब जो था वो चुप तो हो गया, अभी एटलीस्ट मैं सुकून से, एटलीस्ट निश्चिंतता से मैं जी तो सकता हूं, है ना। तो कई बार सहन करना ये नहीं कि उसने इतना गलत कर लिया तो मैं कैसे करूं, वो क्या करूं, नहीं, उसके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो बहुत मायने रखता है, है ना। दूसरों का हिसाब किताब नहीं, खुद का हिसाब किताब था ना उस व्यक्ति के साथ, एटलीस्ट वो चुप तो कर लिया तो वो तो हल्के हो गए। तो कई बार दूसरों को माफ करके, दूसरों के भलाई के लिए हम माफ नहीं कर रहे हैं, खुद की भलाई के लिए हम माफ कर रहे हैं, है ना। खुद फ्री हो जाए उन बातों से। तो इसलिए खुद को दूसरों को माफ करना बहुत ही जरूरी है। सहन करना माना ऐसा नहीं घुट घुट करके सहन करना, घुटना माना वो सहन करना नहीं होता, सहन करना माना कोई उसका इंप्रेशन भी याद भी नहीं रहेगा हमने कभी सहन किया करके। बाबा ने कितना सहन किया, दादियों ने कितना सहन किया है। बाबा जब सब कुछ त्याग करके जब ये संस्था बनाए, सब कुछ त्याग किया, बेगरी पार्ट भी आया ना, उसमें भी सहन किया बहुत कुछ, और लोगों के गालियों को सहन किया। पहले बाबा दादा लेखराज जब थे तो इतना मान शान था समाज में बाबा का, लेकिन जैसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा बन गए तो कितने गाली खानी पड़ी, फिर भी बाबा ने उनको प्यार दिया। उनको कभी भी उनके अंदर मन में उनके बारे में कोई क्रोध हो या फिर श्राप हो या कुछ ऐसा हो कभी नहीं निकला मन से या मुख से, है ना। ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ब्राह्मण कभी श्राप नहीं देते, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अगर दुख मिल गया ना, किसी ने दुख दे दिया, मन से बद्दुआ निकलती है। अभी तक अगर ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर आपके मन से दिल से बद्दुआ निकलती है किसी के प्रति, ये बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि वापस वो लौट करके आएगा, है ना। भले हम मुख से नहीं देंगे बद्दुआ, मन से निकलता है। देखना मुझे दुख दिया है ना, ये दुखी होके मरेगा एक दिन, इसको तो बाबा दिखा देगा एक दिन। हा? बाबा दिखाए या ना दिखाए, मैं दिखा रही हूं ना, बाबा का नाम लेकर के मैं बद्दुआ दे रही हूं, है ना। तो आप जो सोचते हैं बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके संकल्प में बहुत शक्ति है, आपके बोल में बहुत शक्ति है, आपके संकल्पों में बहुत शक्ति है, और उन शक्तियों को अच्छे कार्य के लिए यूज करें, वो बहुत भाग्य मिलेगा आपको। अगर बुरे कर्मों के लिए यूज किया वो वेस्ट चला गया, ना वेस्ट लेकिन नेगेटिव बोझ आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए सोच समझ करके बोलना है और सोच समझ करके सोचना है, है ना। कई बार हम बाबा के बनने के बाद बहुत तपस्या करते हैं, योग करते हैं, बहुत शक्तियां जमा करते हैं, और छोटी छोटी चीजों में नष्ट कर लेते हैं। मुझे ना मान चाहिए, शान चाहिए, मुझे ना ये चाहिए, वो चाहिए, स्थूल चीजें अल्पकाल की इच्छाओं में अपनी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। मिलता है वो सभी बातें, सभी चीजें मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, जो सोचेंगे सिद्ध हो जाएगा। ये विधि से सिद्धि की शक्ति है हमारे अंदर, लेकिन वो शक्ति आप इन स्थूल चीजें छोटी छोटी बातों में नष्ट नहीं करिए। उस सिद्धि को आप यूज करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते। अच्छा बिजनेसमैन कौन क्या करता है, अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी प्रॉफिट मिलता है फिर इन्वेस्ट करता है, जो भी प्रॉफिट मिलता है फिर इन्वेस्ट करता है, वो खर्च नहीं करेगा, बहुत कम खर्च करेगा और इन्वेस्ट ज्यादा करेगा, ताकि वो मल्टीप्लाई होता जाए हमारा इनकम। यो सेम रूल यहां भी अप्लाई होता है। अगर हमने सहन नहीं किया और बद्दुआएं निकल रही है, तो फिर मल्टीप्लाई होने के बजाय कम होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए सोच समझ करके अपनी शक्तियों को यूज करने की जरूरत है। तो आपने आप और ये भारी महसूस नहीं करिए, बाबा हमारा साथी है, बाबा को साथ जब हम रखेंगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि बाबा को हम अनुभव जब नहीं करते हैं ना, बाबा मेरा साथी है तो वो अनुभव जब नहीं करते तो बहुत चीजें बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब बाबा को हमेशा साथ रखते हैं तो बहुत सहज हर चीज लगने लगता है। और चौथी शक्ति है समाने की शक्ति, एडजस्ट होने की शक्ति, समाने की शक्ति, एडजस्ट होना है हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होने की ताकत हमारे अंदर है, या ये कंप्लेंट बना रहता है इस व्यक्ति के साथ मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, ये व्यक्ति हो, ये भाई या बहन हो तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। किसी के साथ बनता है, किसी के साथ नहीं बनता है संस्कारों का, ये जरूरी नहीं कि हर एक के साथ मेरा बनता है, ये जरूरी नहीं है, है ना, कि हर एक का संस्कार अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेवा नहीं करूं, ये व्यक्ति है इसलिए मैं सेवा नहीं कर सकती। सेवा निकालने का तरीका मैं मुझे जानना होगा, तभी जाकर के हम हर एक के दिल के मालिक बन सकते हैं ना। बाबा ये कह रहे हैं कि आपने स्वराज्य अधिकारी बन करके माया जीत और जगत जीत बनना है, जगत जीत बना पूरे विश्व के ऊपर विजय नहीं बनना है, हर एक के दिलों के ऊपर राज्य करना है, दिलों के ऊपर राज्य करना है माना एडजस्ट होकर के चलना होगा, संस्कारों का मेल करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा प्रकाशमणि दादी को देखते थे, पांडव भवन में मैं 4 साल रही, दादी जी के कमरे में हर रोज जाते थे, रात को गुड नाइट करने जाते थे प्रकाशमणि दादी जी के कमरे में, और दादी को ठंड बहुत लगती है और पंखा कोई चलाए नहीं चलता है, सिर दर्द होता है होता था दादी को, और मोहिनी बहन रूम शेयर करते थे दादी के साथ, मोहिनी बहन को जोर फुल स्पीड पंखा चाहिए, उनको बहुत गर्मी लगती है, तो दादी कहते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना कटिया पंखे के नीचे लगाओ, फुल पंखा चलाओ, कोई बात नहीं, मैं रजाई 2 रजाई उड़ करके मैं सो जाऊंगी। ये है एडजस्टिंग पावर। दादी ये कह सकते ना मेरा कमरा है तुम दूसरे कमरे में जाके सो जाओ, मैं दादी हूं, नहीं, इतने बड़ी दादी मोहिनी बहन के साथ वो एडजस्ट होकर के, और 1-2 दिन की बात नहीं है ना, 1-2 दिन बाद हो चलो कहीं आए हैं मधु यहाँ ज्ञान सरोवर में आए हैं, 3 दिन है तो एडजस्ट करना बहुत इजी है, चलो 3 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, एडजस्ट हो कर लेते, लेकिन जिंदगी भर उनके साथ रहना है तो, लेकिन एडजस्ट हर रोज एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन जहां प्यार है वहां एडजस्ट बहुत इजीली होकर के चल सकते हैं, है ना। और समा के चलना, उस चित्र में क्या देखते हैं, सागर हर चीज समा रहा है, हम भी क्या हर व्यक्ति के हर चीज को हम समा के चल सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि इसने है ना ऐसा किया, उसने है ना ऐसा किया, इससे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जितना ज्यादा गॉसिप करते हैं, जितना ज्यादा परिचिंतन करेंगे, वर्णन करते हैं, स्पेशली जब दूसरों की कमियों को वर्णन करते हैं, तो कर्मों के हिसाब किताब में क्या होता है पता है, उनके जो बुरे कर्म आपके ऊपर आता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं 3 तरीकों से आप हिसाब किताब चुक तो करते हो, एक है योग से, दूसरा है शारीरिक व्याधि भोग से, और तीसरा कौन, लोक लाज, जो अपमान निंदा जो होता है उससे आप कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करते हो। अगर कोई मेरी निंदा कर रहे हैं इसका मतलब है मेरे जो बुरे कर्म का हिसाब उसमें ट्रांसफर हो गया। ये बहुत सूक्ष्म है। अगर मैं किसी की बुराई कर रही हूं, इसने ना ऐसा किया, उसने ना ऐसा किया, बुराई कर रही हूं, उसके बुरे कर्म का हिसाब मैंने ले लिया, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते समा के चलो, समा के चलो। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने किया, कोई बात नहीं। मैं कौन होती हूं निर्णय करने वाली, मैं कौन होती हूं जजमेंट देने। धर्मराज तो नहीं हूं ना, धर्मराज नहीं हूं ना, धर्मराज नहीं बनना है। बाबा ने यह भी कहा है कि जज नहीं बनो, खुद के जज बनो और दूसरों के लॉयर बनो, है ना। तो इसीलिए समा के चलना है, देखा अनदेखा करना। कहीं चीजें देखा अनदेखा करके चलते हैं तो फिर बहुत सुखी रहेंगे, है ना। इससे एडजस्टिंग हो ही जाता है, समा के समाना हो ही जाता है। बहुत बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ संस्कारों के मिलन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कारों के मिलन नहीं करेंगे सत्युग में नहीं, रास नहीं कर सकेंगे आप। सत्युग में रास करना है तो यहां संस्कारों का रास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, हिसाब किताब आपने ले लिया, संस्कार आएगा ये जरूरी नहीं है। उनका संस्कार आपके अंदर आएगा वो जरूरी नहीं है, कभी आ भी सकता है, लेकिन फिर वो जो कर्मों का बोझ जो है आपने ले लिया, है ना। हाँ, जहां जरूरी है वहां, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ी गलती किसने किया है सेंटर में या मत जो कोई भी बहुत बड़ी गलती है, और मैं उस बड़ों को जाकर के शुभ भावना से, ऐसा नहीं कि ईर्ष्या द्वेष के कारण से मैं बोल रही हूं इसने ऐसा किया, उसकी जो दूसरों के नजरों में इसकी इसके बारे में जो भावना है वो कम हो जाए, इसके कारण से मैं ना बोलूं, लेकिन जिनको जाकर के बोलना है बड़ों के पास, एक व्यक्ति जो निमित है उनको बोलने की जरूरत होती है, लेकिन फिर उसके बजाय मैं पूरे सेंटर में या पूरे सभी लोगों को जाकर के मैं फैलाऊं कि इसने ना ये किया, उसने ना ये किया, वो किया, वर्णन करूं, ये मेरे ऊपर बोझ चढ़ता है। हाँ जी, आते ही रहेंगे। मेन तो हमारा 8 है, उसके बाद 100 है, फिर के उसके बाद 16,000, ये मेन है। अगर ये तैयार हो जाए ना, बाकी तो एक चुटकी में तैयार हो जाएगा। लोग आत्माएं, अगर वो आत्माएं अपने संपूर्ण स्थिति को पाले, तब दूसरी आत्माएं, तो प्रजा है ना, वो तो ऐसे ही आने हैं, जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना। ये मेन तो ये है 16,108। हाँ, यमराज के ठंडों से। तो हमें निश्चित करना है कि हमें किस में आना है, है ना, 16,108 में आना है या बाद वाले में आना है। जी, दादियां संपूर्ण हो गए, हो गए होंगे, उसका हिसाब किताब तो बाबा के पास है, हमारे पास नहीं है ना। अगर कुछ भी जवाब हम देंगे अभी, मैं अगर दूंगी तो मेरा इमेजिनेशन है, राइट। तो वो बाबा ने इसको क्लारिफिकेशन नहीं दिया है, बाबा ने हर चीज, बाबा कहते हैं कि जो आपको जरूरी है ना वही चीजें मैं बताऊंगा, जो चीज आपको जरूरी नहीं है ना वो जानने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने इस कई बातों के बारे में रहस्य खोला नहीं है, राज नहीं खोला है, तो इसका मतलब है हमें जानने की जरूरत नहीं है, केवल हमें अपने ऊपर फोकस करें बस, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे संपूर्णता की ओर जाना है, संपन्न स्थिति मुझे लाना है। जी अभी कल भी हो सकता है कल भी हो सकता है कोरोना बोल के आया था क्या, अचानक एक दिन बोला सब बंद है ना, तो ऐसे कभी भी किसी भी क्षण आ सकता है विनाश है ना, तो इसीलिए ऐसे ही इसमें नहीं रह सकते हैं कि अभी विनाश नहीं आया तो चलो चलते हैं कोई बात नहीं है, पुरुषार्थ में लगे रहना है, बस फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट शक्ति, ज्यादा समय नहीं है अभी मैं। हाँ जी अच्छा, पहले सामना करने की शक्ति ले लें तो चलिए आपकी इच्छा पूरी कर लेते हैं सामना करने की शक्ति है ना, चौथी हो गई ना, सामान्य की शक्ति हो गई ना, उसका निर्णय के वो ले वे, ठीक है चल सामान्य की सामना करने की पूछ रहे हूँ, निर्णय, चलिए निर्णय करने के लिए पांचवी ना परखने की शक्ति, पांचवी तो परखने की शक्ति है ना, हाँ परखने की शक्ति कैसे हम यूज करें, बाबा सबसे पहले आकर के गिफ्ट क्या देते हैं आपको, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है ना, तो हम परखते हैं और निर्णय करते हैं बुद्धि के द्वारा, और ब्राह्मणों के परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि दिव्य है ना। जो मेडिटेशन नहीं करते या बाबा को याद नहीं करते हैं या दूसरे प्रकार के भी मेडिटेशन करते हैं, उनकी बुद्धि और बाबा के बच्चों की बुद्धि में रात दिन का अंतर है, क्योंकि हमारे योग जो है शुरू होता ही है आत्मा से, उनका योग फिनिश होता है आत्मा तक है ना, तो इसीलिए आपकी बुद्धि बहुत दिव्य है, और जब भी आप परखते हैं और निर्णय करते हैं उसको यूज अच्छी रीति करने की जरूरत है, और बाबा ने हर बात को मुरलियों में स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जब भी निर्णय करना है या परखना है तो क्या करना है, किस स्थिति में स्थित होकर के परखना है या निर्णय करना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के परखना और निर्णय करना है, केवल वर्तमान को नहीं देखना है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए निर्णय लेना है, क्योंकि हमारी बुद्धि एक ना केवल दिव्य है महीन भी है, और हमारी बुद्धि बेहद भी है विशाल भी है ना, बहुत सारे गुण है हमारे बुद्धि में, महीन भी है मतलब सूक्ष्म डिटेल्स भी हम देख सकते हैं और बहुत बड़ा पिक्चर भी हम देख सकते हैं, बेहद भी है, केवल हम अपने जीवन को नहीं देखते, वर्तमान को नहीं देखते, पूरा चक्र को हम जानते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग और संगमयुग ये सब कुछ हम जानते हैं और उसमें विश्वास करते और अनुभव भी किया हुआ है राइट, क्योंकि आत्मा ने वो अनुभव किया हुआ है तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो जब भी हम कोई निर्णय करते हैं तो इन बातों को ध्यान में त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के निर्णय लेना है, और दूसरी बात ये है बाबा ने ये कहा है कि टचिंग पावर और कैचिंग पावर आपका जबरदस्त होना चाहिए, बुद्धि अगर शुद्ध है आपका जो टचिंग पावर और कैचिंग पावर बाबा से बहुत ही क्लियर होगा आपका, बहुत क्लियर, अगर कोई भी बात आई एक सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा को पूछा, बाबा ये परिस्थिति है, मुझे क्या करना है? जवाब टक से आया वहां से, इतना क्लियर होना चाहिए हमारा लिंक बाबा के साथ, तब कहेंगे आपकी डिसीशन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति बहुत जबरदस्त है। और निर्णय करते समय स्वार्थ को नहीं देखना है, मुझे क्या चाहिए, यहां उस सेंटेंस को रिप्लेस कर लीजिए, बाबा क्या चाहते हैं। ये इच्छा होती है ना कि मुझे ये सेवा करना है, यहां जाना है, ये करना है, नहीं, बाबा आप क्या चाहते हैं मैं करूं। तो हर बात में बाबा को बीच में लाने की जरूरत है। अगर ये सोचे ना कि मुझे करना है, तो वो वहां सफलता नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल देती हूं, मेरा ही एग्जांपल देती हूं। मैं पढ़ करके आई, एजुकेशन पूरा करके मधुबन आई, इसी संकल्प से कि मुझे समर्पित होना है। और पहले से बचपन से ही ज्ञान में होने के कारण से मधुबन में, मधुबन के साथ, मधुबन निवासियों के साथ, दादियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, हमारे लौकिक परिवार का, हम सबका। तो पहले से था कि मुझे समर्पित होना है, लेकिन ये कंडीशन था मुझे कर्नाटक में नहीं जाना है, दादी जी जहीं कहां भी भेजे, प्रकाशमणि दादी जहां भेजे वहां जाने के लिए मैं तैयार हूं। इस संकल्प से मैं आई और किसी कारणवश वहां टेलीफोन एक्सचेंज उसी टाइम पे 92 में इंस्टॉल हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जरूरत थी, एक भाई तो था ही, लेकिन बहन मैं दिखाई दी तो दादी ने कहा कि बहन भी रहे तो ताकि फिर दादियों के साथ आना जाना करना वो इजी रहेगा। तो इसी कारण से मुझे वहां मधुबन में रहने का मौका मिला। पहले तो बहुत खुश हो गई, वाह मुझे मधुबन में रहने के लिए मौका मिल रहा है, इतना भाग्य है। लेकिन 6 मास हो गया, फिर मुझे लगने लगा कि ये तो रूटीन वर्क है, तो हर रोज जाओ खाना करो, ऑफिस जाओ, वापस आओ, फिर ये तो रूटीन वर्क है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सेंटर पे जाना है, वो भूत चढ़ गया, वो सवार हो गया कि नहीं मुझे सेंटर पे जाना है, सेंटर पे तो सब कुछ करने को मिलेगा, तो मुझे वहां जाना है। तो दादी को बार बार बोलती रही कि दादी मुझे सेंटर पे जाना है, मुझे सेंटर पे जाना है। दादी रोज टालते रहे, फिर देखते, फिर एक मौका आया, कोई बहन ने कहा कि मुझे सुमन अगर वो चाहती है सेंटर पे आए तो हमारे सेंटर पे वो आ सकती है, क्योंकि मधुबन में हमको देखा था कि चलिए वहां गए। फिर कुछ कारण हुआ मधुबन में, फिर दादी ने कहा कि नहीं तुम वापस आओ, वहां नहीं रह सकती हो, तुम वापस आओ। तो मेरा मन नहीं था वापस आने का, मन मेरी इच्छा थी सेंटर पे सेवा करने की, लेकिन दादी का ऑर्डर माना, उनको नकार नहीं सकते, उनके दादी की इच्छा के बिना मैं रह सकती थी, लेकिन ये नियम नहीं है, ये श्रीमत नहीं है। तो हमको ये बताया गया कि दादी जी जो बोले हाँ जी है ना, तो आ गई, इच्छा नहीं थी। फिर कुछ साल ऐसे ही रही, फिर यहाँ ज्ञान सरोवर आ गए, दादी जी ने यहाँ भेजा तो यहाँ रहे। फिर एक मौका मिला अमेरिका जाने की, प्रकाशमणि दादी तब तक शरीर छोड़ दिए थे, जानकी दादी थे, जानकी दादी ने कहा कि चलो वहां वीजा मिल गया है 10 साल का, तो उन दिनों में बहुत सहज इतना वीजा नहीं मिलता था, तो 10 साल का मिल गया तो चलो वहां कहीं सेट कर लेते हैं इसको, अमेरिका में कहीं। लेकिन वहां 3 मास में फिर कुछ मना, यहां वह तो दादी ने फिर ईमेल लिखा, जब भी मुझे फोन आता था कि वापस आओ तो हमेशा ये टालती रही, दादी जी बोलेंगे, मतलब दादी जानकी चीफ थे ना उस समय, दादी जानकी बोलेंगे तो मैं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। तो मुझे पता कि दादी जानकी चाहते थे कि मैं अमेरिका में सेट हो, तो दादी जी भी सेट दबाव में आकर के दादी ने ईमेल लिखा मुझे कि नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाओ। मेरी इच्छा नहीं थी, दादी जी के कहने पर वापस आना पड़ा। फिर मैं अपने आप को ने समझा दिया कि यही बाबा चाहते हैं, है ना। ये डिफरेंस है कि, है ना, भले हमें हमारी इच्छा नहीं है वो काम करने की या उस जगह पर रहने की या कुछ भी फलाना जो भी है, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन बाबा चाहते हैं तो उसमें ही हमारी भलाई है, राइट। तो इसलिए हमेशा बाबा के साथ हमारा लिंक इतना और पहले से ही अगर कर लेते तो वो सारा एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं, इतना सारा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, है ना। तो इसलिए पहले से, क्योंकि जहां हिसाब किताब है ना, जो हमारे साथ होना है तो हिसाब किताब बाबा को पता है। तो इसलिए हर, चाहे बड़े डिसीशंस चाहे छोटे डिसीशंस जो भी है, डिसीशन लेने से पहले बाबा को बीच में रखिए तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। कहीं भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, एक मिनट में बाबा को पास जाती हूँ तो बाबा क्या करना है, तो टक से जवाब आता है तो वो मतलब नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। वो क्लैरिटी तब मिलता है जब, अब मान लीजिए बहुत कंफ्यूज है, एक बहुत बड़ी डिसीजन लेनी है आपको, है ना, बहुत कंफ्यूज रही, ऑप्शंस आपके पास 3-4 हैं, ये करना है वो करना है, ये आपको पता है प्रोज एंड कॉन्स हर चीज का, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा, कंफ्यूज है ये क्या करे, ये करे, वो करे, वो करे। बाबा के कमरे में गए, बाबा के साथ बातें किया कि बाबा ये मेरा सिचुएशन ये है, परिस्थिति ये है और 3 ऑप्शंस ये है, मुझे जो लगता है ये 3 ऑप्शंस ये है करके आप प्लेन हो जाइए, बुद्धि, मन और बुद्धि को एकदम प्लेन कर लीजिए, कोई संकल्प नहीं, बाबा को याद करना शुरू करें, इसके बारे में सोचना भी नहीं, बाबा को अर्पण कर लिया, बाबा ये है, अर्पण कर लिया, एकदम बुद्धि को प्लेन कर लिया। और फिर कुछ समय के बाद बाबा कोई ना कोई सिग्नल जरूर देंगे, आप आसपास में कुछ, या फिर स्थूल रीति से सिग्नल मिलेगा, मुरलियों से सिग्नल मिलेगा, या खुद को टचिंग मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको पता चलेगा ये करना चाहिए, है ना। कई बार ये 3 ऑप्शंस मैंने जो सोच के रखा है वो 3ों में से होगा ही नहीं, 4था कुछ ऑप्शन होगा और हमने सोचा भी नहीं होगा, तो ऐसे भी जवाब मिलते हैं कई बार, है ना। कुछ भट्टियों में हम लोग ये एक्टिविटी कराते थे, लेटर, एक मिनट में बोल दूं, लेटर लिखवाने की, है ना। तो इसमें करना था लेकिन समय नहीं मिला, लेटर टू गॉड एंड लेटर फ्रॉम गॉड, ये दोनों लेटर्स लिखवाते हैं हम। लेटर टू गॉड में दिल में जो भी है वो खाली करना है, बाबा को जो बोलना है सब निकाल लिख करके खाली कर देंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है तो शुक्रिया करना है, सब लेटर लिख करके दिल खाली करना है। और कुछ समय के बाद फिर हम कहते हैं कि लेटर फ्रॉम गॉड, बाबा से लेटर कौन लिखेगा, तो उस स्थिति में स्थित करा करके फिर वो कनेक्शन जुड़वा, योग के कॉमेंट्री कराते हैं, करा करके उस स्थिति में स्थित करा करके फिर हम कहते हैं आप वतन में जाकर के बाबा से वो सिग्नल लीजिए, जो भी आपने लेटर लिखा है उसके जवाब में बाबा क्या लिख रहे हैं, बाबा क्या बोल रहे हैं, वो क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो ये जो भाषा है मूवी की भाषा है वो आवाज सुनाई नहीं देगा, मैं बोल रही हूं आपको सुनाई दे रहा है स्पष्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन वहां वाइब्रेशंस कैच होता करना होता है, राइट। तो वाइब्रेशंस कैच करके बाबा क्या कह रहे हैं, आप वाइब्रेशंस कैच करके ऐसे महसूस करना बाबा आपके हाथ को यूज करते हुए आपके लेटर लिख रहे हैं, बहुत सुंदर अनुभव करते हैं लोग। और उसमें एक व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे अनुभव, लेकिन एक व्यक्ति आया बाद में आकर के बोला कि इसमें मुझे जो जवाब मिलना चाहिए था ना वो कुछ और ही जवाब मिल गया। मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी जवाब हो सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सोचा ही नहीं था ये सॉल्यूशन भी हो सकता है करके, ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिला है इस प्रॉब्लम का। तो जो, क्योंकि बाबा को पता है, ऐसे जवाब भी मिलते हैं, है ना। तो ये आप केवल अनुभव करना है, और हमारे पास वो अथॉरिटी है, बाबा के बच्चों के पास वो अथॉरिटी है अनुभव करने की। वो अनुभव करके देखिए तो वंडरफुल अनुभव होंगे आपको, और कभी आपके जिंदगी में गलतियां नहीं होंगी, है ना, कम होते जाएंगे आपकी गलतियां जीवन में। ठीक है, हाँ जी, अगर बुद्धि प्लेन होते ही एक क्लिक होता है, एक संकल्प आता है, तो माना वही जवाब है। माना एकदम निश्चिंत होना, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर के जब प्लेन बुद्धि होकर के बाबा को याद करेंगे तो हाँ, बिना हुआ सोचा हुआ भी हो सकता है जी। फिनिश कर लो, समय हो रहा है। अच्छा चलिए, उसके बाद है सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति कैसे सामना करेंगे, गुस्से से, रिवेंज से कैसे सामना करेंगे, प्यार से। कोई परिस्थितियां आती है, जो बीमारी आता है या फिर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, तो बाबा ने तो हिम्मत दिया ही है, वो मतलब हर एक बाबा का बच्चा वो अनुभव करता ही है, हिम्मत, हिम्मत से उस परिस्थिति का सामना करते ही है, प्राकृतिक आपदाएं जो भी परिस्थितियां आती है। लेकिन जो इंसान के साथ जो होता है, व्यवहार में, संबंधों में जो टकराव, उसको सामना करना पड़ता है, तो हमेशा आग को बुझाने, आग को आग से नहीं बुझाया जाता है, आग को पानी से बुझाया जाएगा, केवल प्यार से जीता जाएगा, प्यार की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम सामना कर सकते हैं, है ना। जैसे वो भी जवाब, ये भी जो एग्जाम्पल दिया आत्म भाई का भी, प्यार से ही उन्होंने सामना किया, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। बाबा ने भी बहुत प्यार से ही योग की शक्ति से सामना किया, पिकेटिंग हुआ, योग की शक्ति से सामना किया। और हमारे जिंदगी में भी जो भी परिस्थिति आती है, प्यार की शक्ति से आपको, आप सामना करने की कोशिश करें, तभी उस पर हम विजय पा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक संत थे, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये घटना घटी हुई है। एक संत थे, एक बिरादरी में रहते थे, और उसी बिरादरी में एक कन्या, मतलब बहुत सारे परिवार थे, एक कन्या थी। वो कन्या करीब 20-21 साल की होगी, वो प्रेग्नेंट हो गई, शादी के बिना प्रेग्नेंट हो गई। और फिर वो सोचने लगी, अभी क्या बोलो, कौन बाप है, क्या है, पिताजी तो नाराज हो जाएंगे, ये करेंगे। तो उसने लांछन लगा दी, ये जो संत थे ना, संत है ना, तो उनके साथ मेरा संबंध है, तो इसीलिए ये हुआ, तो ताकि थोड़ा सा शांत हो जाए, ये हो जाए। तो फिर भी गुस्से हुए घर में। तो जब बच्चा पैदा हुआ, तो पिताजी ने क्या किया, वो लड़की के पिताजी ने क्या किया, वो बच्चे को ले जा करके वो संत को दे दिया और कहा, तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो। और संत तो वो शॉक रह गया, तो उसको तो पता ही नहीं है ये क्या बात है। तो उसने बोला कि ठीक है, दे रहे हो तो लेता हूं, मुझे पता ही नहीं है, ले। और फिर वो भिक्षु थे, तो वो भिक्षा लेकर के, और पूरे बिरादरी में पता चल गया, तो ये इसका बच्चा है, इसका है। और इतने तू तू हो गया, कितना बदनामी हुई, कितना ये हुआ। पहले तो बहुत रेस्पेक्ट था उसका, बहुत बदनामी हुई, लेकिन फिर भी वो
ऐसे ही रहना शुरू किया और भिक्षा मांगता रहा। फिर अच्छा कुछ दिनों के बाद वो लड़की को ही बहुत बुरा लगा, ये तो क्या है, इतने देवता जैसा व्यक्ति को मैंने इतना ऐसे बुरा कर दिया करके। फिर वो जा करके सच बोल दिया और सब कुछ क्लियर हो गया। वो तो रही बात वहां की, लेकिन कई बार अपने जीवन में भी बिना मतलब लांछन लगते हैं, आरोप लगते हैं, हमने किया ही नहीं होगा, उसको क्या करेंगे, जाकर के सिद्ध करेंगे कि मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, कई बार जैसे कि अगर मान लीजिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, यहां व्यवहार में, और दीदी ने अगर कोई डिसीजन दे दिया किसी को अगेंस्ट या उसको अच्छा नहीं लगा, तो अगर ये सोचे कि इसने दीदी अपने आप से वो नहीं बोलती होगी, ये ना सुमन बहन ने जाचा करके उसकी दीदी को चुगली किया होगा, मैंने किया ही नहीं है, राइट? मान लीजिए ऐसा होगा तो उसके अंदर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसके कारण से ये हुआ है और मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके मन में ये है मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? और उसके व्यवहार से उसके इससे पता चल रहा है वो ऐसे में, और मैं क्लारीफाई नहीं कर पा रही हूं। तो कहीं बार ब्राह्मणों में या कहीं बाहर भी ऐसे सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, बाबा पर छोड़ दीजिए। मैं हमेशा उन परिस्थितियों में हमेशा मैं ये सोचती हूं, मैं केवल बाबा के सामने अकाउंटेबल हूं, धर्मराज बाबा है, बाबा को पता है मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी सोचे मेरे बारे में, बाबा को पता है। बस लास्ट में जब ट्रिब्यूनल बैठेगा तो उनको पता है ना, बाबा को पता है, ट्रिब्यूनल में जो बैठे तो उनको पता होगा कि मैं क्या हूं। मैं अगर अंदर से साफ हूं, सच्ची हूं, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वहां थोड़ा बहुत सहन करने की जरूरत है और थोड़ा सा पेशेंस बस, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सत्य की विजय हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा धीरज धरने की जरूरत है, नहीं तो ये सोचे कि नहीं ऐसा है वैसा है, मैं फिर नेगेटिव वाइब्रेशन सोचू और फिर हिसाब किताब बढ़ता है, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए वहां फुल स्टॉप लगा करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और लास्ट है सहयोग की शक्ति। सहयोग केवल हमें स्थूल रीति से नहीं देना है, स्थूल रीति से तो सहयोग देना ही है, और फिर साथ साथ शब्दों से भी सहयोग देना है, अच्छे शुभ भावना शुभ कामनाओं के शब्द और मनसा, मन से भी हर एक को सहयोग देने की जरूरत है। छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार है, ब्राह्मणों में क्या प्रथा है, जो पोछे, ये इसका ना हिसाब किताब है, कोई बीमार है तो सोचते हैं इसका तो हिसाब किताब है, इसका हिसाब इतना बुरा है, देखो इतना बीमार है, कौन सा वाइब्रेशंस हो गए, कौन सा वाइब्रेशंस हो गए, नेगेटिव है ना। ये कभी नहीं सोचना, अगर कोई बीमार है तकलीफ में है, कभी ये नहीं कहना या सोचना भी नहीं इसका हिसाब किताब बहुत कड़ा है, नहीं। बाबा ने कहा रहम दिल, बाबा इसको इस आत्मा को शक्ति मिले कि इस परिस्थिति से बहुत जल्दी वो बाहर आ जाए, उस परिस्थिति को सामना करने के लिए इस आत्मा को शक्ति मिले, है ना। सहयोग देना है हमें उन आत्माओं को, कभी भी नेगेटिव वेस्ट नहीं सोचना है, है ना। तो मन से भी सहयोग देना है, शब्दों से भी सहयोग देना, आगे बढ़ाने की कभी भी ईर्ष्या नहीं। वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसको, वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, उनके रास्ते हम ब्लॉक कर रहे हैं, तरक्की के जो भी प्रोग्रेस करने के जो रास्ते हैं हम ब्लॉक कर रहे हैं, वो कर्म वापस हमें हमारे पास आएंगे, है ना। वो कर्म वापस आएगा, हमारे तरक्की के भी रास्ते कोई ना कोई ब्लॉक करेगा, है ना। कभी भी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं। अगर कोई तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दिल से खुश होना है, दिल से दुआ देनी है, बहुत अच्छी सब अच्छा है, बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े, है ना। ठीक है, चलिए अष्ट शक्तियां हो गई, हो गई ना सब, हो गई। परखने की और निर्णय करने एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है ना। ठीक है, ये सभी शक्तियों को कर्म में लाते हुए शिव शक्ति के अनुभव करते हुए विश्व कल्याणकारी बनना है, ठीक है। ओम शांति।